नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बटरवुड स्टोरीज में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिवाली का समय है, आप लोगों ने ढेर सारे पटाखे और दिए खरीद लिए होंगे। दोस्तों बड़ी दिवाली से पहले छोटी दिवाली पड़ती है और मैं बताना चाहूँगा छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। तो इसको नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, इसकी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण अपनी आठों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आके उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, आदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वो त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं, अजमानों, अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर लिया है, उन्हें अपने यहाँ बंदीगृह में डाल दिया है, कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। तो इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के छयों पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवात्सु, नभश्वान और अरुण का संहार कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर ने अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। अच्छा, भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र भागदत्त को अभयदान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण की गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त किया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई और किसी के माध्यम से उन्हें कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। तो सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाई गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। अब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहां वे कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती रहीं, महल में नहीं द्वारका में रहती रहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भगवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वारह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। उसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता की देव शक्ति और माता की पुण्यात्मा होने के बावजूद भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी क्रूरता के कारण उसे नरकासुर कहा जाने लगा था। तो नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वो वरुण का छत्र, आदित्य की कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक पर विजय हो चुका था। वहां पृथ्वी के हजारों सुंदर कन्याओं का हरण करके उसने बंदी बना लिया था और उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुरदैत्य के छयों पुत्रों के साथ अरुण में रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके बाद अपने पुत्र को अभयदान देकर रास्ते लग किया, जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसकी याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने के बाद उस दिन शुद्ध आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी। नरक चौदस के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कुड़वे के पत्ते जल से स्नान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख कर रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी नरक चतुर्दशी की। आई होप आपको पसंद आएगी। तो मेरे पॉडकास्ट को लाइक करते रहें और फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाले और भी रोमांचकारी पॉडकास्ट आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।